सुर्खियों में
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सक्सेना और आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति पर। और इस चर्चा में मेरे साथ भाग ले रहे हैं ऊर्जा विशेषज्ञ श्री नरेंद्र तनेजा। श्री तनेजा, आपका आकाशवाणी में स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि भारत में भी जैसे पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से भारत में भी लोगों के दिमाग में ऐसा डर है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। तो आप क्या हमें कुछ मुख्य जो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं कि ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं?
देखिए, पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो खाड़ी के इलाके में जो युद्ध चल रहा है वो खाली युद्ध नहीं है, वो खाली क्राइसिस नहीं है, वो दुनिया का पहला विश्व ऊर्जा युद्ध है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर हुआ है। और चूंकि वहां से दुनिया का 20% तेल जाता है और भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस जाती है और एलपीजी भी वहां से जाती है, तो इसलिए पूरी दुनिया के अंदर एक तरह का तनाव होना बिल्कुल लाजमी है, समझने वाली बात है, क्योंकि जब इतनी भारी मात्रा में वो डिस्ट्रप्शन हो जाए। अब चूंकि जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें भारत जो है काफी आगे है, तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है उनका जाहिर है कि चिंता ज्यादा हुई। और चूंकि हम अपने देश में अपनी जरूरत का बहुत भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं, लगभग 89% या लगभग 90% के आसपास, और एलपीजी भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं, इसके अलावा प्राकृतिक गैस जो है जिसको सीएनजी या पाइप गैस के रूप में आता है उसको आयात करते हैं, तो जाहिर है कि उसको लेकर के चिंता लोगों के माइंड में भी आई और कुल मिलाकर के दुनिया में भी चिंता हुई। लेकिन हमको ये देखना होगा कि जब इस तरह की क्राइसिस होती है, जो हुई है, जो हमारी वजह से नहीं हुई है, ना वो हमारा उसमें कोई हाथ है, ना हमारी कोई भूमिका है वहां पे, वो तो अमेरिका और इसराइल और ईरान का युद्ध है। हमारी कोशिश तो हमेशा ये रहती है दुनिया में शांति रहे, और हमने कोशिश भी की, लेकिन वो जो कुछ भी हुआ वो मतलब हमारी वजह से नहीं हुआ है। लेकिन वहां पर जैसे ही युद्ध शुरू हुआ और यहां देखा गया है कि हमारी निर्भरता जो है वो तेल पे काफी है, उस इलाके से जहां युद्ध हो रहा है एलपीजी पे काफी है, कतार से खासतौर से जहां युद्ध हो रहा है, प्राकृतिक गैस जो हम देश में प्रयोग करते हैं सीएनजी की शक्ल में या पीएनजी जो पाइप नेचुरल गैस की शक्ल में, वो भी भारी मात्रा में वहां से आता है। तो हमने ये देखा कि हमारी सरकार एकदम हरकत में आ गई और सरकार ने उसको बड़ी बारीकी से देखा कि हम जो है वो तेल को लेके क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस को लेके हम क्या कदम उठा सकते हैं, और एलपीजी जो घरेलू गैस होती है जिसको कुकिंग गैस बोलते हैं, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, उसको लेके क्या किया जा सकता है। 80% दुनिया के देश जो है वो ईंधन के लिए आयात पर निर्भर है या ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर है, और भारत भी उसमें है, क्योंकि प्रकृति ने आपको अगर बहुत तेल नहीं दिया, बहुत प्राकृतिक गैस नहीं दी, तो आप प्रकृति से तो लड़ नहीं सकते। अब यह है कि उसके बावजूद जो है सरकार ने, आपने देखा पिछले 10 सालों के अंदर घर घर जो लाल सिलेंडर होता है एलपीजी का, जो कुकिंग गैस का, घर घर पहुंचा दिया। उससे पहले मात्र 14 करोड़ कनेक्शन थे और आज लगभग 34.5 करोड़ कनेक्शन है, घर घर गैस को पहुंचाया गया। वो सरकार की तत्परता थी, सरकार चाहती थी हमारे घर घर की रसोई है उसके अंदर एक ऐसी सुविधा उपलब्ध हो जाए, ऐसी गैस पहुंचे जिससे प्रदूषण भी ना हो, और महिलाएं जो खाना बनाती है उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, जिससे कि वो ऐसी चीजों पर खाना ना बनाए जो उनका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा उससे हो जाता है। अब जैसे ही युद्ध की आवाज आने लगी और बंदूकों की आवाज और तोपों की आवाज वहां से सुनाई दी, तो सरकार ने तुरंत कंपनियों को आदेश दिया, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की थी या सरकारी, के दुनिया में जहां भी और तेल मिलता है आप जल्दी से उसको खरीदें, जिससे हमारे यहाँ उपभोक्ता को या देश में किसी तरह की तेल की दिक्कत ना हो, क्योंकि हम भारी मात्रा में आयात करते हैं। इसलिए सरकार ने जो कंपनियों को आदेश दिया और तमाम कंपनी के जो अधिकारी हैं वो पूरी दुनिया में चले गए, और जिस दाम पर भी तेल मिलता है सरकार ने कहा भी तो उसको लेकर के आइए, और जहां से भी मिलता है लेके आइए, उसके लिए जो टैंकर होते हैं समुद्री जहाज उसकी व्यवस्था करिए। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो भारत के जो अधिकारी लोग, एग्जीक्यूटिव्स लोग, कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर्स ये सब पहुंच गए, और आज हमने देखा है, अगर आप आज उठा करके देखते हैं तो हमारा देश उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे तेल को लेकर के कोई किसी तरह की दिक्कत या परेशानी या किल्लत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी लोग अफवाहें फैलाते हैं तो अफवाहें के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अफवाहें जो फैलाते हैं वो तो बेबुनियाद बात होती है, लेकिन हकीकत यह है कि जो हमारी तेल की जितनी खपत है पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वो तेल उपलब्ध है, हमारे पास अपने भंडार हैं, जमीन के नीचे हमारे पास भंडार है जिसमें काफी दिनों का हमारे पास तेल है। इसके अलावा कंपनियों के अपने भंडार होते हैं जिसको ऑयल टैंक्स बोलते हैं, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, टैंक फार्म्स होते हैं, उसके अंदर हमें, और उसके अलावा कि दुनिया भर से तेल को लेके आया जा रहा है। अब बात आती है रसोई गैस की, जिसको सिलेंडर जो हमारा एलपीजी का होता है उसके लेकर भी हमने देखा है कि बहुत सारी अफवाहें भी फैली हुआ, लेकिन सरकार ने तुरंत जो है, चूंकि हम भारी मात्रा में एलपीजी आयात करते हैं, हम अपनी जरूरत का 60% आयात करते हैं, 40% जो है वो देश में उसका उत्पादन होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो एलपीजी कुकिंग गैस है, घरेलू गैस जो है, इसका उत्पादन या तो रिफाइनरीज में होता है जब कच्चा तेल को साफ किया जाता है वहां होता है, जहां जो तेल के कुएं और गैस के कुएं होते हैं जो वेट गैस होती है उनसे एलपीजी बनाई जाती है। लेकिन सरकार ने तुरंत जो है, हमारी रिफाइनरी जो है देश भर के अंदर 30 से ज्यादा रिफाइनरी है, उनको सरकार ने निर्देश दिया कि आप और चीजों को छोड़ दीजिए, सबसे पहले सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो घरेलू गैस का करिए, एलपीजी का करिए। तो जहां पहले 40% देश के अंदर था वो बढ़कर तुरंत 60% हो गया। और दूसरी तरफ जो है वो हमारी कंपनियां जो है देश विदेश में चली गई पूरी दुनिया के अंदर, और एलपीजी अन्य देशों से मिल सकती है, चाहे वो उसमें अमेरिका शामिल है, नॉर्वे शामिल है, नाइजीरिया शामिल है, ब्राजील शामिल है, और कुछ और देश जो है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के शामिल है, वहां से उसको लाना शुरू कर दिया। इधर सरकार ने थोड़ा मैनेजमेंट किया, लोगों को कहा भी ठीक है अगर आप जब बुक करते हैं तो कहा गया कि कंपनियों को ज्यादा समय दीजिए आपको डिलीवरी के लिए, ये थोड़ी व्यवस्था ये भी करनी पड़ी चूंकि हम इतनी भारी मात्रा में एलपीजी आयात करते हैं। इस तरह से ये सब कराया गया, तो उसका नतीजा ये है कि भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे जो है अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं पेट्रोल डीजल की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसके अलावा जो है प्राकृतिक गैस की भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। एलपीजी का सरकार ने मैनेजमेंट किया है, प्रबंधन किया है और रेगुलेशन टाइट किया है, उसका नतीजा यह है कि वो भी काफी सुचारू रूप से चल रहा है अगर आप देखते हैं तो।
आपने जिस तरह से बताया तो आगे बढ़ने से पहले हम आइए सुनते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यसभा को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने देशवासियों से ये कहा कि वो तैयार रहे जो आने वाले आगे चैलेंजेस हैं उनके लिए, और ये भी उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है, विजिलेंट है और काफी प्रोएक्टिवली सारी चीजों को मैनेज कर रही है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में क्या कहा।
आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है।
श्री तनेजा, हमने जैसे प्रधानमंत्री को सुना उसमें उन्होंने काफी चीजों के बारे में, काफी स्टेप्स के बारे में जानकारी दी, यहाँ आपने भी एलपीजी के बारे में बात करी और ये भी कहा गया है कि एडिशनल एलपीजी एलोकेशन किया गया है प्रायोरिटी सेक्टर्स को जिसमें माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं, तो ऐसे और कौन से सेक्टर्स हैं और खासकर माइग्रेंट लेबरर्स का जो ध्यान रखा है उनके अलावा और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे सरकार इंश्योर कर रही है कि एलपीजी एलोकेशन ज्यादा से ज्यादा हो पाए?
बहुत अच्छा देखिए प्रश्न किया, जैसे प्रधानमंत्री ने भी संसद में कहा और उसके अलावा जो सरकार ने कदम उठाए अगर आप उनको बहुत बारीकी से देखते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि जो वो वर्ग हमारे समाज के वो वर्ग जो ज्यादा वनरेबल है उसमें वो लोग शामिल हैं जिसमें जो छोटे रेड़ी चलाते हैं या छोटा किचन चलाते हैं और उससे अपना उनके भरपाई करते हैं, उसमें वो भी लोग शामिल हैं जो कि बहुत ही गरीब वर्ग के हैं या ऐसे इलाकों में रहते हैं जिनके पास सुविधाएं बहुत ज्यादा कम है या आर्थिक रूप से वो काफी कमजोर है। तो और दूसरी तरफ जो है वो लोग जो छोटी किस्म का अपना घर से कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो बिना एलपीजी के नहीं हो सकता, तो खास तौर से कुल मिलाकर के वो सारा वर्ग जिनको एक समय में सरकार ने और ज्यादा सपोर्ट दिया था उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत और उनको सब्सिडी भी दी, जिससे कि वो वर्ग, क्योंकि वो तो जाकर के अगर कोई जो ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहा है वो वहां से ले नहीं सकते, तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश ये रही है कि वो वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो वर्ग जो थोड़ा ज्यादा वल्नरेबल है, उसको सरकार ने पहले प्राथमिकता दी और प्रोटेक्ट किया है। जो बहुत बड़ी बात है। उनको प्रोटेक्ट करने का मतलब यह है कि वो वर्ग हमारे समाज का जो किसी के पास अन्य कोई साधन नहीं होता है, अगर बहुत ज्यादा कोई इसमें कीमत बढ़ाता है या ब्लैक मार्केटिंग करता है तो वो पूरी व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रखिए कि राज्य सरकारों से बातचीत हुई है, लगातार बातचीत हो रही है, राज्य सरकारों को बिल्कुल सख्त निर्देश दे रहे गए हैं कि वो लोग जो इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं या होर्डिंग कर रहे हैं या फिर जो है वो लोग जो कि इसको लेकर के र्यूमर फैला रहे हैं या र्यूमर फैला करके अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई राजनीतिक कारणों से कुछ करना चाहते हैं, उनसे बड़ी सख्ती से पेश आया जाए, जिससे इस तरह की कोई बात ना करी जाए, फैलाई जाए कि भाई कोई बड़ी किल्लत होने वाली है और आप दो सिलेंडर ले लीजिए, चार इकट्ठा कर लीजिए, होर्डिंग कर लीजिए। उन सब चीजों को रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ खासतौर से सरकार ने व्यवस्था की। और दूसरी तरफ जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां जो एलपीजी को लेके आती हैं, बनाती हैं, उत्पादन करती हैं, विदेशों से लेके आती हैं, वितरण करती हैं, उनको भी इस बात की खास हिदायत दी गई है कि वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारा काम करें और पूरे विश्व के अंदर किसी भी देश में जहां भी मिलता है एलपीजी उसको लेकर के ले आए और तेजी से उसको लेके आए। देखिए, जैसा प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, युद्ध भारत हमारा तो युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, हम ये देखना है कि किस तरीके से उससे जो सप्लाई डिसरप्शन हुआ है, एलपीजी का हुआ है, तेल का हुआ है, एलएनजी का हुआ है या प्राकृतिक गैस का हुआ है, हम किस तरीके से अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के उपभोक्ता को और खासतौर से जो गरीब वर्ग जो है उसको कैसे उससे इंसुलेट कर सकते हैं, मतलब उससे बचा सकते हैं।
इन कदमों के अलावा सरकार ने और भी काफी सारे कदम लिए हैं और हाल ही में ये भी एक स्टेटमेंट आया ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा कि ईरान ने भारत और बाकी जो फ्रेंडली नेशंस हैं जिसमें रूस और चाइना भी है, उनको ये अनुमति दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कमर्शियल शिपिंग के लिए यूज कर सके। तो यहां मैं आपसे बहुत ही संक्षेप में ये जानना चाहूंगी कि भारत की डिप्लोमेसी कैसे दिखाई दे रही है यहां पे, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत करी थी। भारत की डिप्लोमेसी किस तरीके से आप देख रहे हैं?
देखिए, भारत के तो अमेरिका से भी अच्छे संबंध है, इसराइल से भी अच्छे संबंध है और ईरान से भी अच्छे संबंध है। तो हमारी सरकार ने उच्च स्तर पे, विदेश मंत्री के स्तर पे, हमारे प्रधानमंत्री ने भी बातचीत करी है, हमारे जो विदेश सचिव हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, हमारे राजदूत स्तर पे बात हो रही है, खासतौर से ईरान से ये बातचीत हो रही है कि भाई ठीक है, आप जो कर रहे हैं कोशिश करिए कि मध्य जो शांति लेकर के आए और बात को जो है इसका बातचीत से हल ढूंढे, लेकिन साथ में ये भी कहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से जो है दुनिया का 20% तेल और गैस निकलता है, ऊर्जा निकलती है, वहां से जो भारत के जो जहाज है, वो जहाज जो कि भारत के लिए एलपीजी लेके आ रहे हैं, एलएनजी लेके आ रहे हैं, तेल लेकर के आ रहे हैं, उनको निकलने दिया जाए, क्योंकि हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए तो ये कॉमर्शियल एक्टिविटी है। तो उच्च स्तर पर बातचीत करी और हमने देखा है कि ये जो भारत की जो कूटनीति की पहल है उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत के कई जहाज वहां से निकले हैं और हमारी नेवी के भी कुछ जहाज उस इलाके में पहुंचे हैं जिससे उनको सुरक्षा प्रदान कर सकें, और हमने देखा है एलपीजी के कई शिप्स और इसके अलावा ऑयल के कुछ टैंकर वहां से निकले, और ऐसी उम्मीद है जिस तरह की कूटनीतिक पहल भारत ने करी है और जिस हिसाब से उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है कि आने वाले समय में हमारे देश भारत आने वाले तेल के जहाज, एलपीजी के जहाज, एलएनजी के जहाज और जो है उस रास्ते से निकल पाएंगे, और ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो उनके मित्र देश हैं उनके जहाजों को वहां से निकलने देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, इस तरह का आश्वासन जो है वो ईरान ने भारत को दिया है, जो एक अच्छी खबर है।
यहाँ पे क्योंकि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया तो आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि भारत एक ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चला रहा है जिसमें भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी ने 5 वॉरशिप को डिप्लॉय किया है जो भारत की कार्गो वेसल्स को तनावपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने में गाइड करेंगी। तो इस ऑपरेशन के बारे में आप हमें थोड़ा सा संक्षेप में बता पाएं?
जो हमारी नौसेना है, जो इंडियन नेवी है, भारतीय नौसेना दुनिया में जो सबसे मजबूत नौसेना है उनमें से एक है, और खासतौर से जहां ये युद्ध हो रहा है हमारी नौसेना, हमारे नौसैनिक जो है उस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और पीस टाइम में भी हमारी नौसेना जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी के साथ एक्सरसाइज करती रहती है, तो उस इलाके को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब कुल मिला के कोशिश ये है, क्योंकि ईरान की तरफ से आश्वासन मिल रहा है, अमेरिका और इसराइल ने भी कहा है कि जो भारत के जहाज होंगे उन पर वो किसी तरह का हमला नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ हमारी नेवी जो है वो हमारा ये प्रयास है जो वहां से कॉमर्शियल जहाज निकलेंगे जिनमें के कंटेनर भी हो सकते हैं, तेल भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, एलपीजी भी हो सकती है, जब वो वहां से निकल रहे हैं, क्योंकि इलाका तो वो युद्ध का है, तो इसलिए जो है वो सुरक्षा से वहां से निकल सके, और हमारी जो नेवी है इन कामों में माहिर है, इसकी बड़ी अच्छी उनके पास एक्सपर्टीज है, क्योंकि पीछे कॉमर्शियल व्हीकल्स होंगे, कॉमर्शियल शिप्स होंगे जिनमें ये सब चीजें होंगी, अगर साथ में नेवी होगी तो फिर जो है उनकी सुरक्षा थोड़ी और बढ़ जाएगी और कुल मिला के मैसेज चल जाएगा। कुल मिला के भारत सरकार हर प्रयास कर रही है कि खाड़ी के देशों में पर्शियन गल्फ के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कतों के बावजूद, युद्ध के बावजूद वहां से भारी मात्रा में तेल और गैस का आवागमन शुरू हो सके, जिससे कि भारत के जो उपभोक्ता है उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और जो नेवी है हमारी वो भी इस काम में जुट गई है।
आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को हमें समझाया और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। श्री नरेंद्र जनेजा, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी विस्तार से हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, थैंक्स फॉर हैविंग मी।
सुर्खियों में